ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद्भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय दूसरा और श्लोक संख्या 8 दुर्भग बत लोक अयम यदव नितरा अपि ये सवसंत न विदुः हरिं मीना इव रूपम् दुर्भगो बतमहलोकोऽयम् यदवो नितरामपि ये स वसन्तो न विदुः हरिं मीना इव रूपम् दुर्भगो बतलोकोऽयम् यदवो नितरामपि ये स वसन्तो न विदुः हरिं मीना इव रूपम् दुर्भगो बत लोकोऽयम् यदवो नितरामपि ये स वसन्तो न विदुः हरिं विना इडोपुडुम् दुर्भग अभागा बत निश्चय लोक ब्रह्मांड अयम् यः यदवः यदुकु नितराम् विशेष रूप से अपि भी ये जो संवसंतः एक साथ रहते हुए न नहीं विदुः जान पाए हरिं भगवान को मीनाः मछलियां इव उडुपम चंद्रमा की तरह अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा समस्त लोकों समय यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे जो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाते। राजा कंस के बंदीगर के सिख चौक के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान थे। यद्यपि उन्होंने भगवान के रूप में अपना षडैश्वर्य धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया था, मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। किंतु इनसे भी अधिक अभागे भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं उठा सक पाए। उन्होंने अपने सहित सबों के भाग्य पर खेद प्रकट किया। भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा सोचता है, ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। शास्त्रों से यह जाना जाता है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ, क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है और उन उसमें भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर की उपस्थिति में विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन खारे जल का अनुभव किया है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसार गोभी कहलाता है, जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का यह मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता, किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है भले ही उस रोगी ने दूध कभी नहीं चखा। इस तरह जिन लोगों को इन क्षुद्र लोक का ही अनुभव है, जिनमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों से यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है भले उन्होंने उसे न देखा हो। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उन जैसी मछली नहीं है। मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो कृष्ण को नहीं पहचान पाते वे ऐसी ही मछलियों के तुल्य हैं। वे उन्हें अपने में से एक किंतु ऐश्वर्य बल आदि में कुछ अद्वितीय करके मानते हैं। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसे मूर्ख व्यक्ति को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तन्माश्रितम्। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुरहरिम मीना इवोपम। समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदु कुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाए। इस श्लोक में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जिस पर हमें काफी ध्यान देना होता है। सर्वप्रथम तो आज हमें पता चला कि दक्षिण भारत में उडुपी मध्वाचार्य का जो स्थान है ये उडुप यानी कि चंद्रमा का नाम उसने धारण कर रखा है, इसीलिए उडुपी के नाम। दूसरा कोई है उडुप शब्द का अर्थ है? सचमुच उडुपी चंद्रमा है? यहां उद्धव जी हमें काफी ढंग से जब वृंदावन के बाहर चाहे वो द्वारकावासी भी क्यों ना हो उनके लिए और भगवान के अंतेवासी ये यदव यदुकुल के लोगों को भी बड़े अभागे समझते हैं कि भगवान का जिनका साथ था साथ में रहे फिर भी भगवान को भगवान के रूप में नहीं जानते। जबकि विरोधाभास में ब्रजवासियों को तो ये भगवान है ही नहीं ऐसी सारी भावना है, लेकिन वृंदावन के बाहर भगवान की महत्ता होती है। ज्यादातर हम सब लोग बाहर से आए हैं इसलिए भगवान को भगवान के जानने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। कल एक माता जी जो ब्रिजवासी वो आई और उसने कहा कि बाबा हमारा मन बहुत चंचल है हम क्या करें, हाँ हम 7 पीढ़ी से वृंदावन में रह रहे हैं लेकिन हम उसे ये नहीं कह पाए कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। तो ब्रजवासियों को क्या आवश्यकता है, तो भगवान के अंतेवासी यहां भगवान भगवान को के रूप में जाने ही नहीं जाते थे। हमने कभी सुना भी है कि ब्रजवासियों के कोई गुरु होते तो ये मंत्र देने की भी क्या आवश्यकता थी उन्होंने, लेकिन भौतिक दुनिया की असर यहां भी है इसलिए ये धाम के रहवासियों को भी यानी कि जो असली ब्रजवासी हैं कई पीढ़ियों से जी रहे हैं वृंदावन में जन्म लेना तो कितना महामूला अवसर होगा। तो इन लोगों के लिए क्या है, हाँ पाश्चात्य देशों की असर में सब कुछ चौपट हो जाता है इसलिए फिर से शुरू करना चाहिए, यानी कि भगवान के नाम द्वारा पवित्र होकर ही हम भगवान की महत्ता समझ सकते, लेकिन फिर भी धाम की महिमा है इन पर विरोधाभास कैसे करें। तो जब उद्धव जी यहां ये द्वारकावासियों जब भगवान के अंतेवासी थे क्योंकि वहां तो ऐश्वर्य प्रधान सारी लीला है, यहां प्रेम प्रधान है, प्रेम में तो सीधा व्यवहार होता है यानी कि वो रागानुगा भक्ति वाला व्यवहार होता है, लेकिन जो व्यक्ति रागानुगा भक्ति में नहीं है उनके लिए तो सब कुछ शून्य से ही शुरू करने की आवश्यकता हो, लेकिन रागानुगा भक्ति इस कलयुग में कौन कर सकता है इसे? वो भी सही है, इसीलिए परेशानी आती है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से देखे जाए तो ब्रजवासियों को हमें छूना ही नहीं, इनकी बल्कि सेवा करनी चाहिए। जहां तक वृंदावन की बाहर की बातें हैं उसमें भगवान की महत्ता भगवत तत्व विज्ञानम की आवश्यकता है, इसलिए श्रवणम कीर्तनम से चालू करना चाहिए। तो भगवान का जो तत्व विज्ञान है वो यादव भी नहीं जानते थे पूरे ढंग से, इसीलिए जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो वैसे अगले श्लोक में बताया गया है उसके अनुसार सभी अभागे हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है वहां सूर्य की सरिखाई की गई है कि सूर्य जैसे अस्त होता है तो द्विशेले पशु पक्ष ये जो सांप जैसे हैं वो काफी क्रियाशील हो जाते हैं, चोर इत्यादि भी काफी यानी कि दुशेले व्यक्तियों का वर्चस्व बढ़ता जाता है। तो जब भगवान चले गए, और भागवत में तो ये भी कहा है कि कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, तो कलयुग में सारे लोगों के कलो नष्ट दशामेश पुराणों अर्को अधूमो, यानी कि भागवत रूपी पुराण सूर्य का उदय हुआ है, उससे जो कलयुग में रहने वाले जो लोग हैं, तो इन लोगों चाहे ये वृंदावन में भी रह रहे हैं, वृंदावन के बाहर भी रहे, लेकिन धाम की महिमा का महत्व है उसमें, जिस प्रकार की जहां जो लीला हुई है वो लीला का स्मरण हम कर सकते हैं, लीला का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो कई मर्यादा है कलयुग ने बना रखी है। तो सामान्यतः भगवान का सूर्य जब अस्त होता है तो दृष्टि चली जाती है कि क्या देखना क्या नहीं। जब द्वारका धाम में ये यादव भगवान के स्वांश कहलाते थे, यादव की संख्या कितनी थी, कितनी थी, भगवान की 16,108 रानियां, हर एक रानियों की साथ भगवान ने 10-10 बच्चे पैदा किए, और भगवान के जैसे ही शक्तिशाली फिर भी भगवान के स्वांश हैं। और यहां उद्धव जी कह रहे हैं कि ये भी बड़े अभागे हैं, सबसे ज्यादा अभागे वो है। तो ये क्या विरोधाभास, क्या भक्तों की अनुभूति अलग अलग प्रकार की होती है, सिद्धांत में तो एक सही होनी चाहिए। कैसे समझ सकेंगे कि विरोधाभास। उद्धव जी बचपन से ही भगवान के सेवक, भगवान की सेवा करते, लेकिन इनकी अनुभूति हम सामान्य लोगों को समझाने के लिए उद्धव जी को ये महत्व का कार्य वो अंतर्ध्यान हो गए बाद सौंपा गया था। विदुर के मार्ग उनके द्वारा हम यहां जो सीख रहे हैं तो वो महत्व की बातें हैं, क्योंकि भगवान का ये भगवत्ता वाला यानी कि ऐश्वर्य, इनकी शक्तिमत्ता, इनका सारा प्रभाव वो जानने के लिए काफी आवश्यकता है। नहीं तो भगवान को एक सामान्य मनुष्य मानने में या भगवान को कोई एक शक्तिशाली या ऐतिहासिक व्यक्ति मानते ही संतोष लेने वाले मायावादी भी हैं। उन लोगों को भगवान के मूल तत्व पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को ये कहा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वर, तो परम भाव यानी कि भगवान की ये भगवत सत्ता, भगवान की महत्ता इत्यादि जो है, तो वो परम भाव दिव्य भाव है। दिव्यता की पहचान कराने के लिए जिन्होंने आत्मानुभूति की है वही करा सकते हैं, इसलिए उद्धव जी को छोड़ा। उद्धव जी ने आत्मानुभूति की है सामान्य मनुष्यों के लिए, सारे जगत के, इसमें कोई अपवाद रूप में यहां नहीं। जब कोई ऐसा विरल भक्त पैदा होता है तो भगवान की शक्ति का आवेश लेकर आता है और उन भक्ति भगवान की शक्ति का आवेश लेकर आने वाला भी अवतार कहलाता है, शक्त्यावेश अवतार। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया शक्त्यावेश अवतार क्या, लेकिन वो तो वृंदावन में पैदा नहीं हुए, वृंदावन की बाहर भगवान ने भेजे थे, भगवान को अति प्रिय थे। ऐसा विशुद्ध भक्त की तुलना हम हर एक साधु संतों के साथ नहीं कर सकते। आत्मानुभूति का जहां तक प्रश्न है वो भगवान की महत्ता पर होता है और भगवान की शक्ति का आवेश लेकर भगवान का काम करके जाता है, जो सारी दुनिया में स्पष्ट। लेकिन जब वो भी चले जाते हैं तो ईर्ष्यालु लोग खड़े हो जाते, अस्त होता है भगवान की भगवत्ता का परिचय कराने वाला भी। साधु संत जब चला जाता है तो बहुत गहरा अंधकार व्याप्त होता है और उसमें गैर फायदा उठाने वाला भी बहुत पैदा होता है। कहने का मतलब है कि जहां तक उद्धव जी यहां ये कह रहे हैं कि यादव बड़े अभागे, ज्यादा अभागे वो बताएंगे कि भगवान होते हुए भी भगवान की पूरी पूरी महत्ता नहीं जान पाए थे, ये इनका अभिप्राय। तो हम जैसे की बातों का कहा, सोचो जब उद्धव जी के हिसाब से यादव भी बड़े अभागे थे कि भगवान ने उनकी जो संग दिया, साथ में जिए, फिर भी उनकी महत्ता नहीं, उनके स्वांश वो भगवान की ही एक आत्ममाया द्वारा उनको आच्छादित किया जाता है। लेकिन हमें सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जब तक हम सुधरते नहीं, हमारी शुद्धता आती नहीं, तब तक हमें ये शिक्षा आवश्यक है। ये बताया जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। फेमिलियरिटी यानी जो यहां हमारे इंद्रिय गम्य चीजों हम जो अपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जानकारी पाते हैं और बारंबार पाते रहते हैं वो हमारे लिए सामान्य अनुभव की बात है। तो सामान्य अनुभव को भी हम गहराई से देखते नहीं, गहराई से देखते नहीं, इसलिए उसकी मान्यता बन जाती है। हाँ है, ऐसा है, लेकिन उसके प्रति हम अन्य मनस्क रहते हैं, यानी कि इंडिफरेंट रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अन्य मनस्कता यानी कि गंभीरता नहीं, गंभीरता का अभाव होता है। उनको एक सामान्य ऐतिहासिक पुरुष मानने वाले भी बहुत बड़े साक्षर हैं, लेकिन ऐसे ही लोग ठेकेदारी ले लेना चाहते हैं, ऐसे लोग ठेकेदारी ले भगवान की ठेकेदारी ले लेते हैं और बड़ी बड़ी कथाएं का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े पैमाने पर क्या क्या तमाशा करते हैं। तो यहां श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में काफी हमें समझाते हैं कि इन लोगों को भगवत्ता का परिचय नहीं, फिर भी भगवान की ठेकेदारी लेते हैं। उदाहरण
एक क्षीर समुद्र की बात की, चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर में हुआ और गौ माता का उदाहरण इसमें आ जाता है, क्योंकि क्षीर यानी कि दूध दूध देने वाली गैया है, ये गैया दूध भी देती है और मूत्र भी देती है, लेकिन हमें भौतिक संसार में रहकर सिर्फ मूत्र का अनुभव है, यानी कि खारे समुद्र का अनुभव है। और जहां तक रोग की बात आती है, यकृत यानी लीवर, लीवर का प्रॉब्लम, उसे जॉन्डिस या फिलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। तो जो ये यकृत के रोग रोगी होते हैं, वो रोगी को कभी दूध नहीं दिया जाता, दूध नहीं दिया, लेकिन गौमूत्र का प्रयोग उस पर अक्सर होता है। गौमूत्र द्वारा यकृत का रोग नष्ट होता है। तो जिन लोगों पीलिया से पीड़ित हैं, उनको तो मूत्र का ही अनुभव होता है, यानी कि भौतिकता में जो है, भौतिक संसार में जो है, तो उसको खारे समुद्र का ही अनुभव, उनको दूध तो दिया ही नहीं जाता, दूध का पता ही नहीं उनको। तो उसी तरह एक खारे पानी में रहने वाली मछलियां दूध का स्वाद क्या, तो इसीलिए जहां तक स्पष्टता का सवाल है, ये खारे पानी वाले मछलियां को अनुभव शास्त्र द्वारा ही हो सकता है, शास्त्र द्वारा, शास्त्र वचन ये बताया गया है कि शास्त्र में दोनों का वर्णन है, तो एक का ही वर्णन क्यों बोले, दूसरे का अनुभव नहीं है इसलिए दूसरा वर्णन हमारे लिए आवश्यक नहीं है क्या? शास्त्र में दोनों का वर्णन होता है, क्षीर समुद्र का भी है और खारे समुद्र गर्भदक्षाई का भी है, जो क्षीरोदक्षाई का और गर्भदक्षाई दोनों, लेकिन दोनों भगवान द्वारा उपस्थित हैं, वो महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु से दोनों उत्पन्न हुए हैं, सही। तो इस ढंग से उद्धव जी ये बताना चाहते हैं कि अभागी कौन है, जो भगवान को पूरे पूरे ढंग से जानते नहीं वो अभागी कहलाते हैं, चाहे वो भगवान के सानिध्य में भी क्यों ना हो, यदि भगवान के सानिध्य में भी है, तो क्या भगवान के सानिध्य, भगवान के धाम के सानिध्य में रहने वाले, यदि धाम की महत्ता न जाने, उनको जो मौका मिल रहा है मौके का फायदा नहीं उठाते, तो धाम में रहने के लिए जो हमें बड़ा सौभाग्य मिल रहा है, तो उसका पूरे पूरा उपयोग भगवान की भगवत्ता जानने के लिए भी करना चाहिए, नहीं क्योंकि यहां सिर्फ ये वृंदावन में प्रेम प्रधान ही सारी लीलाएं हुई थी, तो यहां भगवान को जानने की आवश्यकता क्या है, अरे कलयुग यहां भी है, कलयुग यहां पर, जो बाहर से आए हैं तो कम से कम हम पैदा नहीं हुए यहां, लेकिन बाहर से आने वाले को भगवान की भगवत्ता जाननी चाहिए और उनको अपना जीवन सार्थक करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके पवित्र होने की सर्वप्रथम आवश्यकता बताई। जो धामवासी है यानी कि पैदा हुए हैं, इन लोगों की बात अलग है, किसके लिए, जो बाहर से आने वाले हैं इनके लिए, यदि धामवासियों की
सराहना करनी है, इनकी सेवा करनी है, तो उनको ऊंचे स्थान देना पड़ेगा। एक उदाहरण हमने पहले भी दिया था, तो यहां बिहारी जी मंदिर के मुनीम थे, वो भी शायद चले गए, 1993 में हमने ये सुना था कि बिहारी जी का एक बड़ा भगत पहले तो इतना गरीब था, एक अनाथ लड़के के रूप में यहां आया था, और उसने सोचा कि चलो लोग बिहारी जी में काफी श्रद्धा रखते थे तो हम भी कुछ करें। ये लड़के के मन में भाव आए कि चाहूं चाय का गल्ला चालू करें, तो चाय बेचनी शुरू कर दी। और बिहारी जी को 10% कुछ देता था, बाद में धीरे धीरे बड़ा सेठ बनने लगा, तो उसके बिहारी जी को देने के लिए ज्यादा परसेंटेज भी बढ़ा दिए। उसी तरह कम से कम 90% तक पहुंच गए। कहते हैं कि उन्होंने ये जो विद्यमान मंदिर है राधारण के बरसाने धाम में श्रीजी मंदिर, तो श्रीजी मंदिर उसने बनाया था, और उसका मुनि यहां था, तो हमें उससे मुलाकात हुई थी। तो कहते थे कि ये तो सकाम भक्ति है, फिर भी उसने सोचा कि क्या आज तक हमने कोई गुरु किए नहीं है, तो चलो वहां किशोरी शरण बाबा उस समय थे, तो उसके पास गए और उसने एक बड़ी धर्मशाला भी बनाई, तो कहते गुरु महाराज आपको देना चाहता हूं, आप यहां रहिए और कथा कीर्तन इत्यादि करते हैं करो। तो किशोरी शरण आए, उनको गुरु मानने लगा, दीक्षा विक्षा तो कुछ हुई नहीं, लेकिन जांच पड़ताल तो करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा शेठ होगा तो क्या होगा। तो उसने सारा कार्यक्रम इस प्रकार का रखा कि हर रोज अपने कारोबार को जाते पहले गुरु महाराज के दर्शन करें, आशीर्वाद ले लें। चले तो एक दिन ऐसा हुआ, गुरु महाराज ने दरवाजे बंद कर दिए और चौकीदार को कहा कि किसी को आने नहीं देना। उनके साथ दो चार ब्रजवासियों भी थे, तो कुछ चर्चा हो रही थी, तो ये शेठ अपने समय के मुताबिक आए और उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है, तो चौकीदार को कहा कि क्या ठीक तो है ना, बीमार तो नहीं, क्यों ना कोई मिलने आए हैं। तो काफी राधे की फिर हताश होकर वो चले गए, क्योंकि एक प्रकार का उसमें ये नियमाग्रह ऐसा बन गया कि दर्शन किए बिना हम जाए कैसे। हाँ देखो, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, यानी कि हमारी जो जान पहचान वाली जो सारी क्रियाएं होती रहती, यदि उसमें वो कार्यक्रम में थोड़ा भी विक्षेप हो जाता है तो हम कितने चंचल हो जाते हैं। तो और चंचल होने के कारण दोषारोपण होता है। तो हुआ क्या, तो वो शेठ खिन्न होकर चले गए, सोचा कि चलो शाम को लौटते चलो, लेकिन उन्होंने देखा कि फिर भी दरवाजे बंद है। तो निराश तो हुए, लेकिन जरा जानने की कोशिश की, तो चौकीदार ने कहा कि कई ब्रिजवासी लोग आए हैं, चर्चा हो रही है। तो शेठ के मन में देखो क्या भाव, अरे ये गंवार लोगों के साथ सारा दिन और हमारी कोई कीमत नहीं। तो ये भाव किशोरी शरण समझ गए। दूसरे दिन उसको बुलाए, चाबी दे दी, मैं चल रहा हूं। ये ब्रिजवासियों की महत्ता तो नहीं जानता, ये धामवासी है, तो उसे गंवार समझता है, उनकी महत्ता नहीं समझता। इन लोगों को हमारे साथ क्या निस्बत है, सिर्फ भगवान के लीलाओं की चर्चा है और क्या। तो सेठ नहीं समझ पाए और किशोर ईश्वर चले गए। वो पीछे दौड़ा कि माफ करना, हमारी गलती हुई, ठीक है, तो तेरे स्थान पर ठीक है, हम अपने स्थान पर। तो सकाम भक्त होते हुए हम शायद कई बार गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कि धाम की महत्ता यदि जिसके ख्याल में है तो उसी ढंग से समझे। तो जब भगवान है, भगवान का साथ होता है, स्वयं जब प्रकट हुए, फिर भी वो अपनी अंतरंग माया से अपने ही स्वांशों यादवों को ऐसे अज्ञानता में डुबो रख सकते हैं। लेकिन क्या हम भगवान के स्वांश हैं, भगवान के स्वयं के अंश हैं हम, के विभिन्न अंश भगवान से हमेशा अलग हुए हैं। तो विभिन्न अंश होते हुए हर एक जीव चाहे कहीं से भी आया हो, उसको भगवान की दिव्यता की पहचान भगवान नाम की सफाई द्वारा अवश्य होगी, वो करनी ही चाहिए। वो उसे मामूली समझेगा तो कैसे उसकी प्रगति हो सकती है, भगवान को की पूर्ण जानकारी में कैसे प्रगति हो सकती, नहीं हो सकती। तो इस ढंग से हमें ये सारा सोचना चाहिए कि ये अभागे क्यों कहलाते हैं और उद्धव जी क्यों अभागे कहते हैं और ज्यादा अभागे कहते हैं। और उदाहरण इतना बढ़िया दिया है, प्रभुपाद जी सादी भाषा में कहते हैं, कुपमंडुक दशा, कुएं में मेढक होता है, वो अटलांटिक समुद्र की गहराई चौड़ाई इत्यादि का उसको क्या पता है, वो तो अपने अहंकार के भाव से नापने की या तुलना करने की चेष्टा करता है। वो कहते हैं कि एक बार उसका जैसा ही कोई मेढक वहां अटलांटिक समुद्र की पहचान करके आ गया कुएं में और कहने लगा, ओ तूने अटलांटिक समुद्र की बात सुनी है, तो कितना, अरे कितना बड़ा है पता है, तो वो तो अपने हिसाब से बड़प्पन की तुलना करने लगा, तो वो मेढक अपना गला फुलाने के इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा है, लेकिन उसमें ही वो गले का फुग्गा फूट जाता है ना, यानी कि छोटी दिमाग से बड़प्पन की महिमा का पता नहीं चलता, उसके लिए शास्त्र का उल्लेख अवश्य आवश्यक है। हम अपनी छोटे दिमाग से छोटी बुद्धि से भगवान की महत्ता का परिचय नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्र चक्षु द्वारा हमें स्वीकारना होता है। तो यहां ठीक ढंग से बताया है इन इन भगवान को समझने की विधि और आवश्यकता और उसकी महत्ता क्या है, तो ये समझने की काफी आवश्यकता यहां हमें दिखाई देती है। तो किसी को कोई प्रश्न है?
अभी आपने कहा कि हम भिन्न अंश है भगवान,
विभिन्न अंश, भिन्न तो है ही लेकिन ऊपर से विभिन्न, विशिष्ट रूपेण भिन्न।
तात्विक रूप से तो कहा जाता है कि भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते, तो उनसे भिन्नता कैसे है?
भगवान आपकी कितनी नजदीक है? भगवान परमात्मा में आपके बगल में ही बैठे हैं, तब भगवान की नजर से आप भिन्न हैं या हम भगवान से दूर हैं, भगवान का कुछ पता ही नहीं, भगवान की महत्ता तो हम भिन्न हुए, लेकिन भिन्नता का कारण ईर्ष्या बताई गई है, इसीलिए ये भिन्नता भी सनातन भिन्नता बताई गई है, इटर्नली कंडीशन। ये समझदारी जो है शास्त्र की कि भगवान अपना स्वांश का विस्तार करके परमात्मा के रूप में जीव की अंदर भी और कण कण के अंदर, दो कण के बीच में भी सर्वत्र विराजमान, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार बताया गया है। सही, तो हमारी भिन्नता का कारण अपनी दुर्बुद्धि है, भगवान से हमने चुनौती दे दी है, इसलिए अपने पास यदि कोई भी भौतिक साधन आ जाता है तो भगवान को और चुनौती देते हैं, इनकी सुनते नहीं कि ये काम चलाव है, आपको धोखा देने वाली है, सिर्फ मेरे अकेले की ही शरण में आ जाओ, ना ना ना, बैंक बैलेंस की शरण है मेरे पास, ये शरण है वो शरण है। तो अनादिकाल से जीव इसी तरह भटकता भटकता जब मनुष्य योनि में आता है तो क्या भगवान के साथ का बेर भी नहीं समझ पाएगा, विभिन्नता भी नहीं समझ पाएगा?
भिन्नता का मतलब ये हुआ कि जो जीव माया आवर्त है उसको भिन्न कहा जाता है, माया आवर्त जीव को जो है भिन्न कहा जाता है।
माया स्वयं भिन्न प्रकृति है, लेकिन जो जीव है, जीव तो माया का अंश नहीं है, वो भगवान का अंश है, वो थोड़ा भिन्न हो सकता है, फिर भी उसे जबरदस्ती से अलग होना पड़ा है ना।
इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, जो भगवान का अंश है वो माया आवर्त हो गया है, उसको हम भिन्न अंश कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं?
वो तो जैसी आपकी अनुभूति हो वैसा आप योग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे क्या, भिन्नता और विभिन्नता में कहा, भगवान कहते तू मेरा अंश है, जब मेरा कहते हैं तो भिन्नता कहा नहीं, लेकिन उनकी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए बेर मिटेगा, वो जो कहते हैं वो करना चाहिए, जब बेर मिट जाता है तो विभिन्नता भी मिट जाती है, भिन्नता तो चली ही जाती है। तो यहां जब यादवों की बात है, यादव तो स्वांश कहा गया है, भिन्नांश भी नहीं कहा गया, फिर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने हमें सिखाने के लिए ये बताया, इसीलिए उद्धव जी अपने अनुभूति से ये कह रहे हैं कि ये बड़े अभागे थे, तो हम लोगों की दुर्भाग्य की सीमा कहां, बहुत गहरी है, हमें भगवान के ये माला करने में कितनी दिक्कत आती है, भगवान का ये कथा सुनने में भी कितनी परेशानी आती है। हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं कहां करते हैं, इसलिए ये जानकारी की आवश्यकता सभी बाहरी लोगों को है ही, जो जो मूल रूप से ब्रिजवासी हैं इन लोगों के लिए नहीं है, धाम के अंतेवासी हैं, इनकी फिक्र मत करो, फिक्र हमें अपनी करनी चाहिए। सही ना, हम लोग सब बाहर से आए, हम क्यों धाम में पैदा नहीं हुए? दुर्भाग्य थे इसीलिए ना, तो फिर लेकिन ये दुर्भाग्य मिट जाता है, और दुर्भाग्य मिटाने के लिए ये धाम का सानिध्य हमें भी यदि मिलता है तो उसका पूरे पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो ये योग माया में ही तो डालना पड़ता है। भगवान के साथ जो जो इनके साथी गोप बालक इत्यादि सब थे, सभी जीव थे, भगवान के स्वांश भी थे, वेद की रुचाएं भी थी, सब भगवान की शक्तियां थी। तो भगवान के साथ अंतरंग व्यवहार करने वाले को भगवान की योग माया में ही रहना पड़ता है, इनकी आंतरिक शक्ति का प्रभाव में रहना पड़ता है। स्वतंत्र रूप से हम इच्छा के अलावा क्या बता सकते हैं, लेकिन भगवान वो इच्छा पूर्ण करने के लिए हमें योग्य कार्यवाही दे देते हैं। इसलिए हमारा वो स्वरूप बनता है जिसमें हम अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले भगवान को तो जानते ही हो, लेकिन भगवान उनको योग माया में कौन, नहीं तो भगवान अपने जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, योग माया में जहां तक उद्धव जी का यह प्रश्न है, उद्धव जी की अनुभूति का प्रश्न है, तो वो क्यों कह रहे हैं कि भगवान होते हुए भी भगवान को जानते थे, तो क्या भगवान की जो नौ अक्षौहिणी जो सेना दुर्योधन के पक्ष में चली गई, भगवान ने उनको उनका भी संहार होने दिया? वो तो भगवान की सेना थी, भगवान की शक्ति का ही तो आविर्भाव था और प्रकट था, और दुर्योधन ने मान लिया, भगवान ने जाने दी। क्या वो योग माया में नहीं थे? लेकिन ये भगवान अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो प्रेम में विक्षेप करने वाला ये भाव भगवान की भगवत्ता का था, वो वृंदावन की परिधि में गोकुल में हुआ था, सही ना? वो यहां तो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये भगवान की भगवत्ता का कोई यहां ज्यादा कोई परिचय भी नहीं करना चाहता, इसीलिए ये गोलोक वृंदावन की लीला कितनी विशिष्ट है, जो द्वारका लीला मथुरा लीला इत्यादि से बहुत ऊंची होती है। तो ये तो प्रेम प्रधान है, प्रेम प्रधान प्रकृति में रहने का जब अवसर मिलता है तो उसके अनुसार हम अपना जीवन संवार, ये मौका यहां भगवान सीधे कंट्रोल करते हैं या माया द्वारा कंट्रोल करते हैं, अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा कंट्रोल करते हैं या बहिरंग शक्ति द्वारा कंट्रोल करते हैं? वो तो कंट्रोलर है ही, हम क्या स्वतंत्र हैं क्या? तो फिर
वी आर कंट्रोल, लेकिन हम ये इच्छा कर सकते हैं हम किसके कंट्रोल में रहना चाहते हैं। माया के कंट्रोल में रहना चाहते हैं, ओ जा भगवान के, तो विभिन्न नाश बन जाए। चौरासी लाख योनि में भटक भटक करके हम भगवान की शक्ति में ही तो थे ना, लेकिन कौन सी जो भगवान को बुलाने वाले। और कोई जय श्री प्रभुपाद क्यों माता जी का प्रश्न है कोई। वो शायद गलत सीखे होंगे हमारे से ही, इसीलिए इनका गुनाह नहीं निकलता। सचमुच ऐसी बात हमें गोवर्धन में, जब हम भरतपुर थे तो गोवर्धन से हमें चार गाय दान मिली। ठाकुरदास बाबा हमारे गांव के हैं, उन्होंने कहा कि चलो ले जाओ। तो जब गैया लेने गए हम, तो गोवर्धन शहर में जहां जो गुरुवार को ये होता है हाट लगता है, तो हम गए और हम चार गाये उनके आदमी ने हमें दिलवा दी बछेरे के साथ और भरतपुर। लेकिन हमारी नजर कहीं और गई, जहां गैया बंदी थी सभी, वहां कहीं मुसलमान लोग या कोई और मांस भी पका रहे थे। उन्होंने बोला नेता भी भोगा कि यहाँ ये क्या है। तुम हमने बाबा जी से पूछा कि ऐसा विरोधाभास क्यों। इनमें इनका गुनाह नहीं है, वो ये सब प्रदूषण आया है बाहर वालों ने यहां, इसलिए उनका गुनाह नहीं। देखो इनकी दृष्टि, ब्रजवासियों का कहां गुनाह निकला है। यहां सारा वृंदावन में आज असली ब्रजवासी कौन है, कहां है, वो दिखने में भी नहीं आता। सब बाहर व्यापारी लोग आकर बैठे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं, जो भी भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन हमें यहां रहने वालों का भी गुनाह नहीं है। धाम की सेवा में सर्वप्रथम यदि अपराध जो आता है तो धामवासियों का उनकी कोई आलोचना नहीं करते।
इसका ये भी जब भगवान कृष्ण ये यहाँ से चले गए तो उनके साथ जो वृंदावन वासी थे यानी वृंदावन पे कर से लुप्त हो गया था उसको, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल ब्रजवासी है।
वैसे धाम तो है ना, धाम में आप भी ब्रजवासी हो लेकिन शायद असली नहीं हो। सही ना, ब्रजवास तो है लेकिन असली नहीं। लेकिन जहां तक अपनी उन्नति करनी है भगवान के, ये सिद्धांत तो हमें मिलता है कि हम आपका अपराध नहीं करें। सही
बोले, असली भी नहीं डाल
डाल। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।